नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ हरे कृष्णा। तो कल हमने प्रारंभ की हमारी इस साल की श्री राम कथा, और कल हमने चर्चा की रामायण के पाठ के महत्व के विषय में, और बहुत कुछ कहा गया है रामायण के पाठ के विषय में। विशेष रूप से इस चैत्र मास में, जिस महीने में प्रभु श्री रामचंद्र अवतीर्ण हुए, और जैसे कि कल हमने सुना कि रामायण का पाठ करने से हमारे शरीर में जितने भी पाप बने रहते हैं, हम सब पापों से मुक्त हो सकते हैं। और विशेष रूप से इस कलयुग में कहा गया है, रामायणेति यत्राम सकृद उच्यते यदा तदैव पाप निर्मुक्तो विष्णुलोकम सगच्छति। नारद मुनि कहते हैं कि केवल रामायण पाठ करना तो दूर की बात है, केवल ये रामायण शब्द, इस शब्द का उच्चारण यदि कोई कर ले इस कलयुग में, रामायण एति यत्राम सकृत उच्यते यदा, केवल इसका उच्चारण करने मात्र से, इस शब्द का, रामायण शब्द का उच्चारण करने मात्र से, तदैव पाप निर्मुक्त, वो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और तत्पश्चात विष्णु लोकम सगच्छति, और वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। तो ये महत्व है केवल ये रामायण शब्द का उच्चारण करने का। तो कल हमने चर्चा की लव और कुश, जिनको वाल्मीकि मुनि ने स्वयं, जो रचयिता है रामायण इस ग्रंथ के, उन्होंने पूरी रामायण लव और कुश को सुनाई सबसे पहले। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो सबसे सरल उपाय क्या है भगवत प्राप्ति करने का, बहुत ही सरल उपाय बताया गया है, और विशेष रूप से इस कलयुग में, परस्परा अनुकथनम पावनम भगवत यशः मिथोरतिर मिथो तुष्टि निवृतिर मिथ आत्मनः। कि हम सब इस कलयुग में निवृत्ति के इच्छुक हैं, हम सब बद्ध हैं और अपनी बद्ध अवस्था से निवृत्ति चाहते हैं। हर एक व्यक्ति इस भौतिक संसार में, हालांकि वो जानता नहीं होगा कि निवृत्ति किसे कहते हैं, मुक्ति किसे कहते हैं, परंतु हर एक व्यक्ति इस भौतिक संसार में निवृत्ति के पीछे चेष्टा कर रहा है। जैसे एक छोटा सा बालक जब खिलौना मांगता है तो वो वास्तविक रूप में बोर हो रहा है इसीलिए कुछ खेलना चाहता है, उब गया है। लोग खेलते क्यों हैं? उब जाते हैं इसलिए खेलते हैं। तो वो जो बोरियत है, वो जो उबना है, उससे वो मुक्ति चाहना पाता है। तो क्योंकि वो मुक्ति पाना चाहता है तो इसलिए वो कोई खिलौना ढूंढता है। तो छोटा सा बालक जब खिलौना ढूंढ रहा है तो ये समझना चाहिए कि वो भी मुक्ति का इच्छुक है, परंतु अभी उसके लिए मुक्ति की परिभाषा क्या है? बोरियत से मुक्ति। वही बड़ा होता है तो जो बोरियत है वो भी बढ़ती जाती है। जितना व्यक्ति संसार में भौतिक रूप से बड़ा होता है उतना ही संसार में बोरियत बढ़ती जाती है। कई बार लोग बच्चों को देखते हैं, हर समय व्यस्त रहते हैं बच्चे, किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, या तो खेलेंगे या तो भागते रहेंगे या रोते रहेंगे या सोते रहेंगे किसी न किसी कार्य में वो व्यस्त रहते हैं। तो जब बड़े हो जाते हैं कोई व्यक्ति तो जब छोटे बच्चों को देखता है हर समय व्यस्त रहता है तो इच्छा करता है, मेरा बचपन मुझे याद आ रहा है, जब मैं भी इस प्रकार से व्यस्त रहता था। देखिए सभी शांत हैं दो व्यक्ति को छोड़कर, एक वहां पर है और एक यहां पर है। तो हम जब बच्चों को देखते हैं, कई लोग कहते हैं बच्चे जो हैं मन के सच्चे हैं और भगवान के स्वरूप हैं, तो जैसे हम बड़े होते हैं तो इस संसार में जो बोरियत है, इस संसार में कितनी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम उब जाते हैं। स्कूल जाना सबसे पहले अच्छा लगता है। मुझे याद है जब सेमेस्टर शुरू होता था जून जुलाई के महीने में तो स्कूल जाना अच्छा लगता था, क्योंकि अब नई वर्दी मिली है, सब कुछ नया है, नई वर्दी, और क्योंकि बारिश का महीना होता है तो इसलिए नया रेनकोट, नए जूते बारिश के, अभी नई क्लास में बैठेंगे और नए शिक्षक आएंगे तो सब कुछ नया होता है तो अच्छा लगता है। परंतु वही स्कूल, वही वर्दी, वही शिक्षक कुछ महीने पश्चात अब बोरियत देते हैं। कह रहे रोज रोज उसी स्कूल में जाना, उसी बेंच पर बैठना, उसी क्लास में, और रोज आकर वही शिक्षक सामने शुरू हो जाता है, ये करो वो करो। और मुझे याद है कुछ मित्र वो स्कूल में एक घंटा पहले जाते थे, हमारा स्कूल का समय था 10:30 बजे का, तो एक घंटा पहले जाते थे क्योंकि पता है 10:30 से लेके 5 तक तो पूरा बोर होने वाले, तो उससे पहले कुछ खेल कूद लें। तो घर में बोलकर जाते थे कि जल्दी जाना है आज, आज जल्दी जाकर होमवर्क दिखाना है, परंतु जल्दी जाकर वहां पर स्कूल शुरू होने से पहले पसीना पसीना खेल में, और फिर वो असेंबली हाउस में जाना पड़ता था, वहां पर वो प्रार्थनाएं, और प्रार्थनाओं के अंत में जनगण मन, और आप सब जानते हैं कि जब वो जनगण मन कहीं पर भी गाया जाए तो ये नियम था खड़े हो जाओ, कोई बैठ नहीं सकता, ऐसा कोई नियम था ना कि जैसे ही वो जनगण मन शुरू होता है तो खड़े होकर और दोनों हाथ सीधे होने चाहिए। तो मेरे कुछ मित्र थे वो इतना खेलने के पश्चात थक जाते थे कि वो असेंबली हाउस में खड़ा रहना, वो विशेष रूप से वो जन गण मन में खड़ा रहना बहुत बड़ी तपस्या होती। सबसे बोर वही लगता उनको, और कई तो गिर जाते, वो इतना देर तक खड़े नहीं रह पाते थे तो चक्कर आकर गिर जाते थे, तो कुछ आवाज आती तो समझ गए हो एक घंटे पहले आया था स्कूल के। तो जैसे हम बड़े होते हैं उतनी बोरियत और बढ़ती है संसार में। तो एक जो नव युवक होता है या नव युवती होती है, बोरियत हो जाती है अकेले रहते रहते, तो फिर विवाह करना चाहिए। तो अकेलेपन से बोरियत, उससे निवृत्ति पानी है, उससे मुक्ति पानी है अकेलेपन से, तो विवाह। तो विवाह उस अकेले व्यक्ति के लिए निवृत्ति है, मुक्ति है। और फिर कई बार देखा जाता है विवाह के पश्चात अब फिर वो निवृत्ति चाहता है। अब किससे निवृत्ति चाहता है? जिसके अंदर बंधा है अब उससे निवृत्ति चाहता है कि बहुत हो गया। तो ये संसार में चलता रहता है, किसी को पकड़ना और फिर उसे बोर होकर छोड़कर उससे निवृत्ति पाना, फिर किसी और चीज को और चीज को और चीज को। और आजकल ये जो आधुनिक सब कुछ हमें इंद्रिय भोग प्रदान कर रहा है ये मीडिया, इसके कारण तो लोगों को बताया जाता है कि आप हर क्षण कुछ न कुछ अलग पाने के इच्छुक होने चाहिए आप। यदि आपको केवल आपका दांत घसना है सुबह, तो दांत घसने के लिए हर समय कुछ नया नया टूथपेस्ट होना चाहिए। तो कितने लोग केवल अपना पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं कि कितने नए टूथपेस्ट निकालते रहे इस दांत को घिसने के लिए। देखिए, मनुष्य जीवन मिला है हृदय को घिसने के लिए, हृदय को साफ करने के लिए। परंतु कितनी कंपनियां, हजारों वर्कर उसके अंदर, और कितने वैज्ञानिक अपने दिमाग लगा रहे हैं, किस लिए? कैसे दांत घिसे, कैसा ये जो चमड़ा है, ये चर्म है इतना बड़ा, कैसे इसको घिसे। मुंबई में कॉलेज में हम प्रचार करते हैं, वहां एक व्यक्ति पीएचडी कर रहा है, वो हमारे कार्यक्रम में भी आता है। तो इसको जब मैंने पूछा कि पीएचडी आप किस में कर रहे हैं, तो 8 साल से ये पीएचडी कर रहा है। और आपको आश्चर्य होगा कि ये कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहा है। इसने कहा कि मैं पीएचडी कर रहा हूं कि जो साबुन से निकला हुआ बुदबुदा होता है, जब साबुन हम लगाते हैं तो जो झाग निकलता है, बबल या बुदबुदा जिसे कहते हैं, वो कितने समय तक रहता है? कुछ समय तक बनता है और कुछ क्षण में फूट जाता है। तो ये व्यक्ति पीएचडी कर रहा है, उसका जो समय है रहने का बुदबुदे का, उसको कैसे बढ़ाया जाए। कितने ज्यादा समय तक वो पानी का झाग जो है वो कितने ज्यादा समय तक रह पाए, इसके ऊपर 8 साल से पीएचडी कर रहा हो। तो मैंने कहा, भैया क्या कारण है ये पीएचडी करने का? तो उसने कहा, बड़े बड़े ये जो साबुन की कंपनियां हैं, इन्होंने पैसा दिया है, बहुत पैसा दिया इन व्यक्तियों को पीएचडी करने पर इस सब्जेक्ट के ऊपर। और क्यों? क्योंकि जो बहुत ऐश्वर्यशाली धनवान व्यक्ति हैं, जब वो इनकी कंपनी का साबुन लगाते हैं और जब उनके शरीर से वो झाग नीचे फिसलता हुआ जाता है, तो उनको अलग प्रकार की गुदगुली होती है। तो वो साबुन का झाग फिसलते हुए शरीर से जब जाता है तो गुदगुली होती है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए वो पैसा देते हैं इन साबुन के कंपनियों को कि आप ये जो झाग है आपके साबुन का, इसको ऐसा बनाओ कि ज्यादा समय तक हमारे इस शरीर के ऊपर से फिसलते हुए जाए, ताकि हमको ज्यादा समय तक गुदगुली हो। यह है मनुष्य जीवन का ध्येय। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है वो एक झाग के समान है, बुदबुदे के समान है। जैसे सागर में ये सारा झाग, ये फेन बनता है नमक के कारण, तो कहा गया है कि ये फेन, ये जो झाग है सागर में जो बनता है तट पर, ये कितने समय तक टिकता है? क्षणभंगुर, जीवन टलमल कमल दल जल कहा गया है कि कमल के दल पर एक बूंद को आप रखो तो कितने समय तक वो बूंद टिकता है उस कमल के पत्ते के ऊपर। उसी के समान ये हमारा मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है, उस फेन के समान है, उस बुदबुदे के समान है। और यदि हम इसकी भी आयु बढ़ाने चाहें एक साबुन के झाग की, तो दूर की बात है। यदि ये शरीर जो बुदबुदे के समान है इसकी भी आयु बढ़ाना चाहें तो शारीरिक रूप से नहीं बढ़ा सकेंगे। एक ही तरीका है, जब हम आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति बनेंगे तब। तो देखिए आजकल लोग हर प्रकार का कार्य कर रहे हैं बोरियत से मुक्त होने के लिए। तो यहां पर कहा गया है श्लोक में, निवृत्तिर मिथ आत्मनः, कि यदि हमें इस संसार से निवृत्ति चाहिए, सब कुछ इस संसार से निवृत्ति का अर्थ है कि जो कुछ इस संसार से संबंधित है उससे निवृत्ति, हमारा शरीर, इस शरीर से संबंधित जगह, स्थान, घर, परिवार, धन, सब कुछ, सबसे निवृत्ति, तो उसे प्राप्त कैसे किया जाए? तो भागवत के इस सुंदर श्लोक में कहा गया है, परस्परा अनुकथनम, कि हमें एक साथ आना है सब मनुष्यों को, और परस्परा अनुकथनम करना है। जैसे लोग एक साथ आकर अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, आजकल टीवी में क्या होता है, परस्परा अनुकथनम, परंतु किसका अनुकथनम चल रहा है? माया का। एक व्यक्ति मुझे बता रहा था कि आजकल टीवी में बताया जाता है कि तुम कितना बड़ा झूठ बोल सकते हो उसके ऊपर तुमको इनाम मिलेगा। ऐसा कोई झूठ बोल दे कि कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सके कि इतना बड़ा झूठ भी कोई बोल सकता है। तो ये लोग सब एक साथ आते हैं इस टीवी के प्रोग्राम में, और परस्परा अनुकथनम क्या होता है, कैसे सबसे बड़ा झूठ बोला जाए। मुंबई में हमारे एक भक्त हैं, वो बता रहे थे कि उनके पिताजी ने एक स्पर्धा में भाग लिया था, और वो स्पर्धा क्या थी, कौन दूसरे व्यक्ति को कितनी बड़ी से बड़ी गाली दे सकता है, इसके ऊपर स्पर्धा हुई। तो पूरा जो नगर था वो आया था, और सभी लोग उसमें टीम बनाए थे, और उसमें से इसने कहा मेरे पिताजी जीते। कहा कि ऐसी गाली दी कि आगे वाला, फिर वो उसका मुख बंद हो गया, वो कुछ आगे कह ही नहीं सका। ये सब कुछ मनुष्य समाज में आजकल परस्पर हो रहा है। परंतु यहां पर जैसे हम जब ट्रेन में सफर करते हैं, विशेष रूप से जब मैं नासिक आना जाना करता हूं, तो बहुत से साक्षात्कार मिलते हैं ये 4 घंटे के सफर में। तो मेरे बगल में इस बार मैं जब आ रहा था तो मेरे बगल में 2 व्यक्ति बैठे थे। तो जैसे ही सुबह मैं ट्रेन में बैठा तो मैंने अपनी माला निकाली और उन्होंने पेपर निकाला। तो जो खिड़की की तरफ बैठा था वो व्यक्ति पेपर पढ़ रहा था, और अक्सर आप देखेंगे कि पेपर पढ़ते समय कभी नींद नहीं आती इन व्यक्तियों को, कभी नींद नहीं आएगी। चाहे सुबह जल्दी उठकर ट्रेन पकड़ी हो, जो उनका उठने का समय नहीं होता, परंतु फिर भी, और सुबह का पेपर है और कहते हैं ताजा खबर, कहते हैं कि नहीं ताजा खबर है, ये खबर कभी ताजा नहीं होती, ये हर समय बासी खबर होती है, केवल व्यक्ति और उनके नाम बदले जाते हैं। तो ये व्यक्ति वो पेपर पढ़ रहा था और वो स्वयं खोले हुए था पेपर। तो यहां पर देखिए परस्पर कैसे चलता है इनका कार्य। तो वो पेपर पढ़ रहा था, उसके बगल में जो बैठा है वो झांक रहा था, और जो सामने बैठा था वो वहां से पढ़ रहा था। तो परस्पर 3 लोग एक साथ, तो ये जो बीच में व्यक्ति बैठा ये झांक कर उसके पेपर में देख रहा था। और जब मेरा जप हो गया तो मैंने किताब निकाली प्रभुपाद जी की और मैं पढ़ना शुरू किया, तो अब इधर झांकने लगा कि भाई इसने क्या खोला। तो जब मैं प्रभुपाद जी की किताब पढ़ रहा था तो बीच बीच में कभी यहां झांकता कभी यहां झांकता, और जब भी वो यहां झांकता नींद आती उसे, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता था उसको। उसने 1-2 लाइन पढ़ने का प्रयास किया तो मैं थोड़ा निकट किया पुस्तक की, कुछ समझ में आए तो इसका भी उद्धार हो जाएगा। तो अक्सर देखा जाता है जब एक बार वो देखते हैं प्रभुपाद की पुस्तक को, थोड़ा आकर्षित लगती है पुस्तक, और फिर थोड़ा ध्यान से 1-2 लाइन पढ़ना शुरू करते हैं, फिर समझ में आता है कि ये जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले यदि पढ़ लिया कि तुम शरीर नहीं हो, तब तो फिर वहां पर ही एक छोटा सा हार्ट अटैक आ जाता है। तो इस व्यक्ति को मैं देख रहा था कि बीच बीच में मेरे पास ये झांक रहा था पुस्तक में, तो वहां पर इंटरेस्ट नहीं आता, थोड़ी नींद आती, डुलकी मार रहा था, परंतु वहां पर जब भी झांकता था तो आंख खोलकर। तो एक व्यक्ति वो मैं बता रहा था कि जब भी मुझे नींद नहीं आती तो मैं आपके जो भागवत है मैं उसको खोलकर पढ़ता हूं, और उसने कारण बताया। वो कारण क्या देता है कि भागवत में कहा गया है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, कि व्यक्ति को इस कलयुग में नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि अभद्र हैं इतने सारे अभद्र हैं उसके जीवन में, तो अभद्रों के कारण नींद नहीं आती। तो भागवत जो पढ़ता है सारे अभद्र नष्ट प्रायेषु, तो जब सारे अभद्र नष्ट हो जाएंगे तो क्या बाकी रह जाएगा, नींद बाकी रह जाएगी। ये उसने कैलकुलेशन किया। तो परस्पर अनुकथनम, परंतु इस श्लोक में कहा गया है कि वो अनुकथनम परस्पर क्या होना चाहिए, भगवत पावनम यशः, वो श्री भगवान के विषय में कथन होना चाहिए, श्रवण और कीर्तन, और पावनम जो हमें पावन करे। और कहा गया है मिथ रतिर मिथ तुष्टि, कि जब उस प्रकार का कथन होता है तो हर समय रति जागृत होती है भगवान के प्रति, और तुष्टि, इस संसार में हम हर समय तुष्टि और पुष्टि चाहते हैं, तुष्ट और पुष्ट बनना चाहते हैं इस संसार में। तो व्यक्ति को यदि तुष्ट और पुष्ट बनना है तो यहां पर एकमात्र उपाय बताया गया है, परस्परा अनुकथनम भगवत पावनम यशः, श्री भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करना, यही एकमात्र उपाय है तुष्ट और पुष्ट होने का इस संसार में। नहीं तो इस संसार में देखिए, हम देखते हैं कि लोग उपन्यास, ये मैगजीन या पेपर पढ़ते हैं, और पढ़ने के पश्चात ये पेपर कहां पर जाते हैं? रद्दी में। किसी व्यक्ति को यदि कल का पेपर दो, अरे कल का पेपर, तुरंत फेंक देगा उसे। बंबई में तो सुबह का पेपर शाम को कोई पढ़ता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई तुष्टि पुष्टि नहीं दी गई हमारे आत्मा के लिए। इसलिए जब व्यक्ति शुरू करता है उसे पढ़ना, तो तुरंत समझ में आ जाता है, धीरे धीरे उसे बोरियत होती है और उसे फिर रद्दी में फेंकना पड़ता है। परंतु जब व्यक्ति भागवत पढ़ना शुरू करता है, जैसे हमारे एक सन्यासी कविचंद्र महाराज बता रहे थे कि वो दिल्ली और मथुरा की ट्रेन में जब भी वो सफर करते हैं तो पुस्तक वितरित करते हैं। तो उन्होंने एक व्यक्ति को भगवत गीता दिखाई, तो व्यक्ति पेपर पढ़ रहा था, तो भगवत गीता दिखाई, तो भगवत गीता देखी, कितना दाम कितना, तो उन्होंने कहा कुछ 100 रुपए है, अच्छा बाइंडिंग है और इतनी बड़ी पुस्तक है, 100 रुपए तुझे बहुत महंगा है, 100 रुपए बहुत महंगा। तो महाराज उनको पूछते हैं कि आप रोज पेपर पढ़ते हैं? बोला हाँ रोज पढ़ते हैं। और कितना है पेपर का दाम? कहा 3 रुपया है। तो 3 रुपया पेपर का दाम है, और महीने में यदि रोज पढ़ते हो तो कितना हो गया महीने का? 90 रुपया। पूरे महीने का 90 रुपया हो गया। और उसको पीते पीते अभी मैंने देखा आपने 2 चाय पी ली 10 रुपए की, तो हो गया कितना? हो गया, यदि केवल वो 2 चाय ही लो तो 100 रुपया हो गया। तो 100 रुपए आपने महीने में पेपर पे तो गवा दिए, और क्या मिला? वो सब रद्दी में गया, वो सब पेपर रद्दी में गया। परंतु ये 100 रुपए की किताब लोगे तो जीवन भर ये आपके साथ रहेगी, और उसके साथ साथ ये किताब क्या करेगी? आपका पेपर छुड़ा देगी, तो उतना खर्चा और बचेगा। तो वो सुन रहा था, उसने सुना है भाई इतना बड़ा कैलकुलेशन तो मैंने आज तक कभी किया नहीं, तो पेपर बंद कर उसने ले ली किताब, और हो सकता है आगे चलकर उसका पेपर भी उस भगवत गीता के वजह से बंद हो जाए। तो मितह रति मितह तुष्टि, ये जो मितह शब्द है, ये शब्द आया है मैथुन से, जैसे संसार को मैथुन आगार कहा गया है, और काम पीड़ितम कल हमने सुना कलयुग का एक लक्षण है, कलयुग वासियों का लक्षण है काम पीड़ितम, काम से पीड़ित रहते हैं हर समय। और ये जो मैथुन है ये इसका एक लक्षण है, इस काम वासना का। तो यदि हमें इस काम वासना से मुक्त होना है तो परस्पर अनुकथनम भगवत, भगवान का होना चाहिए। और इसीलिए यहां पर स्वयं भगवान श्री रामचंद्र अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि वो अपने पुत्रों के मुख से अपनी ही गाथा सुन रहे हैं। तो कोई व्यक्ति कहेगा अरे भाई ये अपनी ही गाथा सुन रहे हैं, बहुत बड़े अहंकारी लगते हैं। परंतु हम किसी की गाथा सुनते हैं वो व्यक्ति हमसे ऊंचा होता है, तब जब किसी व्यक्ति के विषय में हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो हम में नहीं है, इसलिए उसके विषय में सुनना चाहते हैं। परंतु भगवान श्री राम से ऊंचे कौन है? तो यदि उनसे पूछा जाए कि आप किसके विषय में सुनेंगे, कौन आपसे ऊंचा है? कोई नहीं, तो उनको उनके विषय में ही सुनना होगा। और वो अपने विषय में इतने ध्यान से नहीं सुन रहे थे, जैसे कल हमने चर्चा की, जैसे ही सीता का चरित्र बखान हुआ तो स्वयं भगवान श्री रामचंद्र सिंहासन छोड़कर नीचे सभी के साथ बैठ गए। तो भगवान भी अपने भक्तों के विषय में सुनने में ज्यादा आनंद लेते हैं, और इसलिए भगवान अपने उदाहरण से दिखा रहे थे कि ये परस्पर अनुकथनम किस प्रकार से करना चाहिए। तो एकमात्र उपाय इस कलयुग में यही है, यदि हमें निवृत्त होना है, मुक्त होना है, केवल आपस में आकर ये भगवान के विषय में चर्चा करना। और प्रभुपाद जी कितनी बार अपने प्रवचनों में कहे हैं कि पहले गांवों में क्या हुआ करता था, सभी खेत से आते थे और खेत से आने के पश्चात वो सभी एकत्रित होकर कीर्तन किया करते थे, श्रीमद् भागवत रामायण का पाठ किया करते थे और प्रसाद खाकर सो जाया करते थे। और आजकल लोग ऑफिस में आने के बाद क्या करते हैं, ऑफिस में जाने के बाद और ऑफिस से आने के बाद, आजकल तो आते ही हैं लोग 10, 10:30, 11 बजे और उसके बाद फिर चालू होता है उनका पाठ रावण का, वो टीवी चालू कर और वो चलता रहता है कई बार 1, 2, 3 बजे तक। और क्योंकि ये लोगों ने ये आदत डाल ली है आजकल शहर में रहते हुए, तो मैं जब आने से पहले कार्यक्रम कर रहा था, एक व्यक्ति मेरे को आके कहता है कि उसकी समस्या है कि वो पूरी रात भर सो नहीं सकता, उसको नींद आती है जैसे ही सूर्य उदय होता है तब उसे नींद आती है, इसलिए वो रोज आजकल मंगल आरती आ रहा है। तो मैंने देखा रोज मंगल आरती आ रहा है, तो मैंने पूछा भाई मंगल आरती अचानक रोज देख रहा हूं मैं, तो उसने कहा क्योंकि नींद नहीं आती रात भर। और नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि उसने कितने सालों से यह आदत डाल ली थी कि वो आता जब कॉलेज से और सब कुछ खा पी कर फिर 12 बजे टीवी चालू करता और 12 से लेके सुबह तक ये आदत डाल ली थी, तो उसे जब ही सूर्य का उदय होता तभी नींद आती थी। तो कलयुग में देखो जब किसी व्यक्ति का दुर्गुण है वो दुर्गुण भी सद्गुण में परिवर्तित हो जाता है जब वो मंगल आरती के लिए आ जाता है। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि ये रामायण का पाठ कितने उत्साह से, कितनी उत्सुकता से हमें करना चाहिए। और फिर वाल्मीकि मुनि अब अपने पहले बालकांड में वो अयोध्या नगरी के विषय में बताते हैं कि अयोध्या नगरी किस प्रकार की थी। ये जो अयोध्या नगरी है इसे नाम मिला अयोध्या, कोई जानता है इसका अर्थ क्या है अयोध्या नाम का? अयोध्या, ये ऐसी नगरी थी कि कोई प्रतिद्वंद्वी योद्धा इसे भेद नहीं पा सकता था, कोई इसे भेद कर अंदर नहीं आ सकता था कोई योद्धा, तो अयोध्या से हुआ अयोध्या। हालांकि आजकल तो अयोध्या किसी और कारण के वजह से वो विख्यात हो रही है। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे तो कुछ व्यक्ति हमें देखकर कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तो लगा कि हम भी इन क्योंकि ऐसे कपड़े पहने हैं तो हम भी वही कहेंगे कि मंदिर वहीं बनाएंगे। तो जब कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने कहा मंदिर यहीं बनाएंगे, हृदय में मंदिर बनाना है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरी ठाकुर, उनको मदन मोहन मालवीय एक बार उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि मैंने सुना है कि आप चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है उसे सिद्ध करने के लिए आए हैं, और उनकी वाणी है पृथ्वी ते आचे जो तो नगर आदि ग्राम, सब नगर में सब ग्राम में आप चैतन्य महाप्रभु का नाम, कृष्ण का नाम और लोगों को वैष्णव बनाओगे और मंदिर खोलोगे हर ग्राम में हर गांव में। तो भक्ति सिद्धांत सरोवर ठाकुर ने कहा कि हर नगर में हर ग्राम में नहीं, हर व्यक्ति के हृदय में, हर व्यक्ति के हृदय में मुझे मंदिर खोलना है। तो जब उन्होंने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे, तो भक्ति सिद्धांत सरोवर ठाकुर के अनुसार मंदिर यहीं बनाएंगे। तो जब हमने कहा तो थोड़ा वो सहम गए और फिर कहते हैं मंदिर फिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोई मंदिर यहां पर नहीं बनाना चाहता, क्योंकि यहां पर किसी और को पहले से ही निवास स्थान दे दिया है और वो दिया है किसको, रावण को। तो राम का मंदिर कैसे बनेगा जब तक रावण का वध नहीं होगा। राम का राज्याभिषेक हुआ गा जब रावण का वध हुआ, तो क्योंकि काम वासना से पीड़ित इस कलयुग में सभी रावण को और रावण के मंदिर को स्थापित किए हैं इस हृदय में, तो जब तक राम आकर उसका वध नहीं करेंगे तब तक मंदिर यहां अयोध्या नगरी नहीं बनेगी यहां पर। तो इस अयोध्या नगरी के विषय में कहा गया है कि रामायण में वाल्मीकि मुनि ये दो शहरों के विषय में कहते हैं, एक है अयोध्या और एक है लंका। केवल ये दो राजधानियों के विषय में कहा गया है रामायण में विस्तार से। तो अयोध्या ये राजधानी थी कौशल देश की, और बहुत सुंदर अयोध्या के विषय में वर्णन किया गया है, क्योंकि अयोध्या जो नगरी थी वो स्वयं वैवस्वत मनु ने बनाई थी और उनके ही वंश में आगे इक्ष्वाकु और महाराज दशरथ हुए। तो स्वयं मनु महाराज, वैवस्वत मनु, उन्होंने अयोध्या नगरी बनाई, और ये अयोध्या नगरी 12 योजन लंबी और 2 योजन चौड़ी थी, और सरयू नदी के तट पर बहुत ही सुंदर ये नगरी थी। तो जब वाल्मीकि मुनि वर्णन कर रहे हैं अयोध्या नगरी का और लंका की नगरी का, तो वो बताते हैं कि अयोध्या को नगर कहा गया है या पुर कहा गया है, क्योंकि जो प्रांत किसी नदी के तट पर होता है तो उसे पुर या नगर कहते हैं। तो अयोध्या नगरी या अयोध्यापुर, ये दोनों कह सकते हैं अयोध्या को, क्योंकि वो सरयू नदी के तट पर है। और लंका किसके तट पर था, लंका समुद्र के तट पर। तो जो प्रांत समुद्र के तट पर होता है उसे पट्टन कहता है, कहते हैं, जैसे एक विशाखापट्टनम है समुद्र के तट पर। तो लंका को पट्टन कहते हैं और अयोध्या को पुर या नगरी। परंतु दोनों के वर्णन में वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जब लंका का वर्णन करते हैं तो लंका के वर्णन में वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि वहां पर क्या देखने को मिलता था, बड़ी बड़ी इमारतें और इंद्रिय भोग के लिए सभी प्रकार के साधन, क्योंकि वहां का राजा सबसे बड़ा इंद्रिय भोगी, तो जो राजा है वैसी प्रजा होगी, और जैसा राजा वैसी प्रजा और वैसा ही राज्य। तो लंका का वर्णन जब वाल्मीकि मुनि करते हैं तो उसमें बताते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें और इंद्रिय भोग के लिए सरोवर, उपवन इत्यादि, इतना ही वर्णन केवल है लंका के विषय में। परंतु अयोध्या का जब वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि मुनि, तो अयोध्या के वर्णन में वाल्मीकि मुनि क्या वर्णन करते हैं, कोई बड़ी बड़ी इमारतें नहीं, कोई बड़े बड़े उपवन या सरोवर इंद्रिय भोग के कोई साधन ऐसे नहीं, अयोध्या का वर्णन करते हैं अयोध्या निवासियों का वर्णन करते हुए, कि जो अयोध्या के निवासी थे उनका चरित्र क्या था। तो अयोध्या का वर्णन है और अयोध्या के निवासियों के चरित्र का वर्णन, कि वो किस प्रकार से शीलवान सभी थे अयोध्या निवासी, वो किस प्रकार से सभी संस्कार से युक्त थे और आपस में कितना प्रेम था सभी अयोध्या निवासियों में, संतोष। और सबसे प्रमुख गुण सब अयोध्या वासियों का था कि राम के प्रति अनन्या भक्ति। तो दोनों में अंतर देखिए, लंका का वर्णन है केवल इंद्रिय भोग के साधन, और अयोध्या का वर्णन है अयोध्या निवासियों का चरित्र और प्रभु श्री राम के प्रति उनकी भक्ति। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जब वो अमेरिका गए 1965 में, तो जब वो पहुंच ही रहे थे बोस्टन हार्बर, तो वहां पर उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतों को जब देखा, अब देखिए जब कोई साधारण व्यक्ति अमेरिका के देश को देखता है तो बहुत प्रभावित होता है, परंतु जब श्रील प्रभुपाद जी ने देखा तो प्रभुपाद जी बहुत दुखित हुए अंदर, और वो सोचने लगे कि ये सारा समुदाय साम्राज्य रजस और तमस में घिरा हुआ है, सब जगह प्रभुपाद जी को केवल रजोगुण और तमोगुण दिख रहा था उस समय। तो कैसे ये लोग ये भगवत संदेश सुन पाएंगे, प्रभुपाद जी सोच रहे थे। देखिए जब कोई व्यक्ति भारत से अमेरिका जाता है तो क्या देखता है, कितना कितना अच्छा ये देश है, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, और कितने सुंदर लोग हैं, सब कुछ बड़े बड़े उनके कारें हैं, बड़ा बड़ा शरीर है, बड़ा बड़ा अहंकार और बड़ा बड़ा पाप। तो लोग अक्सर जो भारतीय वहां पर जाते हैं बहुत ज्यादा वो मोहित हो जाते हैं सब देखकर, परंतु देखिए श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त जब जाते हैं तो वो क्या देखते हैं। प्रभुपाद जी लंदन में थे और टीवी इंटरव्यू चल रहा है, पूरे लंदन में श्रील प्रभुपाद जी का इंटरव्यू दिखाया जा रहा है, और वह व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी से पूछता है, हमने सुना है कि आपके शास्त्रों में यह नर्क के विषय में कहा गया है, तो नर्क क्या है। प्रभुपाद जी ने कहा लंदन नर्क है। तो कहा अच्छा अब दूसरा प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए लोग आजकल ये अभी जो ये समर वेकेशन शुरू होने वाला है, गर्मी की छुट्टियां, चारों तरफ बंबई में बॉम्बे टू लंदन फ्लाइट। यदि प्रभुपाद जी को पूछा जाता तो प्रभुपाद जी उस पर लिखते बॉम्बे टू नर्क का फ्लाइट, इतने कम पैसों में वहां पर जाकर यहां यहां घूम सकते हैं आप। और वास्तविक रूप में हम जब वहां पर प्रचार के लिए गए थे कुछ साल पहले ये लंदन और अमेरिका में, तो वास्तविक रूप में जो प्रभुपाद जी कहते हैं वो सत्य है। अब देखिए नर्क के विषय में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि बहुत अंधेरा रहता है, इसलिए पाताल लोक नीचे का लोक अंधेरा होता है वहां पर बहुत। और ये लंदन में भी हमने देखा कि सूर्य देखने को भी नहीं मिलता, हर समय बादल से घिरा हुआ आकाश, और हर समय उस प्रकार का माहौल, और हर समय ठंड और थोड़ी बारिश गिरती रहती है, और सभी लोग अपने घरों में बस या तो आग तापते रहते हैं या शराब पीते रहते हैं। और क्योंकि वहां पर पाया जाता है कि नर्क सा वातावरण रहता है, हर समय अंधेरा और इतनी ठंड, तो उसके वजह से लोग घरों में ही बंद रहते हैं, और घरों में परस्पर तो किसी संबंध है नहीं वहां पर किसी का, क्योंकि घरों में कोई होना चाहिए संबंध करने के लिए, तो सभी से तो पहले झगड़ा कर सभी को बाहर निकाल दिया गया है घर से, रहता है केवल एक कुत्ता सभी के घरों में, तो कुत्ते से कितना कोई समय बिताएगा। तो जब ठंड का मौसम होता है वहां पर तो ज्यादातर आत्महत्याएं उस मौसम में होती हैं ये लंदन में, क्योंकि इतनी ठंडी होती है लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो घर में करेंगे क्या, तो घर में इतना तनाव रहता है, घर में रहते 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 फिर आत्महत्या कर लेते। तो इसलिए प्रभुपाद जी को जब पूछा गया कि ये नर्क क्या है, प्रभुपाद जी ने सीधा यहीं पर नर्क है आए, ये लंदन जहां पर आप लोग रह रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि जो गांव है गांव वो गांव सत्वगुण में है और जो शहर होते हैं वो रजोगुण में होते हैं। और शहर के अंदर ये सब जो मदिरालय वैश्यालय ये सारे जो जगह होते हैं ये तमोगुण में। तो प्रभुपाद जी को पूछा एक शिष्य ने, परंतु प्रभुपाद जी हमारे सारे मंदिर तो शहर में है, इस्कॉन के, तो वो कौन से गुण में है? प्रभुपाद जी ने कहा सारे इस्कॉन के मंदिर वैकुंठ में है, हालांकि वो किसी भी शहर में क्यों ना हो परंतु वो वैकुंठ में है। परंतु यहां पर अयोध्या नगरी के विषय में जब कहा गया तो अयोध्या नगरी के विषय में यही वर्णन किया गया है कि वहां के निवासी किस प्रकार के थे, उनकी अनन्या भक्ति केवल राम के प्रति, केवल यही वो चाहते थे। इसलिए जब रामचंद्र जी को वनवास मिला तो सारी अयोध्या नगरी रामचंद्र जी के पीछे जाने लगी, कोई आसक्ति नहीं थी उन्हें अयोध्या नगरी से, उन्हें आसक्ति केवल राम से थी। इसलिए आचार्य बताते हैं कि जब रामचंद्र जी उनको जब वनवास जाना है बताया गया तो रामचंद्र जी कौशल्या माता के पास जाते हैं केवल सूचना देने के लिए, ऐसा नहीं कि शिकायत करने के लिए कि देखो कई कई ने क्या किया है और कुछ करो उसके विषय में, उसे भेजो वनवास और ये सब। रामचंद्र जी केवल सूचना देने जाते हैं और आशीर्वाद लेने जाते हैं कौशल्या माता का, और उसके पश्चात सीता, सीता के समक्ष जाते हैं रामचंद्र जी सूचना देने के लिए कि मैं जा रहा हूं। जैसे कि कई बार हम घर से जाते हैं तो सूचना कर सूचित करके जाते हैं, ऑफिस जा रहा हूं मार्केट जा रहा हूं, वैसे प्रभु रामचंद्र जी सीता को कहते हैं मैं थोड़ा वनवास जाकर आता हूं 14 साल का। तो माता सीता तुरंत वो कहती हैं कि भैया मुझे इसका कोई रंज नहीं कि आपको वनवास मिला है, क्योंकि आप जहां पर रहोगे वहां पर मैं रहूंगी और जहां कहीं पर भी आप रहोगे वो मेरे लिए आध्यात्मिक संसार है। तो प्रभु रामचंद्र सीता को कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने वचन दिया है, मैंने जनक महाराज को वचन दिया था शादी के पश्चात विवाह के पश्चात मैं हर समय तुम्हें स्वर्गीय आनंद दूंगा, ये जो राजकीय ठाट बाट और ऐश्वर्य तुम्हें मिला बचपन से जनक महाराज ने दिया, तो मैंने ये वचन दिया था उन्हें कि मैं हर समय यही देता रहूंगा, इसी प्रकार की सुविधाएं और स्वर्गीय ठाट बाट मिलेगा तुम्हें। तो माता सीता कहती हैं सबसे पहले कि देखिए प्रभु, मेरे लिए जहां पर आप हैं वो स्वर्ग है, यदि आप नरक में भी जाएं परंतु मैं वहां पर भी आपके साथ रहूंगी तो मैं स्वर्ग में रहूंगी, और यदि आप नहीं हैं और मुझे स्वर्ग में कोई डाल दे तो वो मेरे लिए नरक है। और फिर माता सीता कहती हैं कि ठीक है आपने वचन दिया मेरे पिता को कि मुझे स्वर्गीय ठाट बाट में रखेंगे, मैंने भी एक वचन दिया मेरे पिता को और वो वचन ये था कि जहां कर कहीं पर भी आप रहेंगे वहां पर मैं रहूंगी, तो आप अपना वचन पूरा कीजिए मैं अपना वचन पूरा करती हूं, देखते हैं किसका वचन पूरा होता है। और क्योंकि जो भक्त हैं वो हर समय उनका पलड़ा भगवान से भारी रहता है भक्तों का, और यदि सीता जैसी भक्त हो तो क्यों ना। तो माता सीता के लिए स्वर्ग या नर्क जहां पर राम है और जहां पर राम नहीं, वही नर्क हुआ जहां पर राम नहीं और जहां पर राम है वही स्वर्ग हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी रामानंद राय से जब पूछा कि इस पूरे संसार में सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है बताओ, जब रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु ने पूछा सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है संसार में, तो रामानंद राय कहते हैं कि भक्तों के संग से वंचित हो जाना इससे बड़ी विपत्ति और कोई नहीं संसार में। और वही अयोध्या वासी वो देख रहे थे कि जब रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे तो सारे अयोध्या वासी रामचंद्र जी के पीछे पीछे कहे कि हम भी चलेंगे भाई वनवास, आपको वनवास मिला है आप उसको पूरा कीजिए, हम आपके पीछे पीछे रहेंगे और यदि आपको कोई तकलीफ हुई तो थोड़ा दूर 1 किलोमीटर पीछे रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम सब जाएंगे एक को छोड़कर, कई कई को यहां पर छोड़ेंगे तो कई कई अकेली यहां रहेगी और ये पूरे अयोध्या की नगरी है अयोध्या वासी सारे रामचंद्र जी के साथ जाएंगे तो जो वन है वो अयोध्या बन जाएगा और जो ये अयोध्या है ये वन बन जाएगा। तो 14 बरस वनवास मिलेगा किसको, इस कई कई को। परंतु प्रभु रामचंद्र जी का प्रयोजन दूसरा था। तो यहां पर वाल्मीकि मुनि वर्णन कर रहे हैं, वो वर्णन कर रहे हैं कि वास्तविक रूप में अयोध्या नगरी के गुण क्या थे, अयोध्या नगरी के निवासी, और उनके बहुत ही सुंदर गुण वो बताते हैं। कहते हैं कि जितने भी अयोध्या निवासी थे उनको सबसे पहले वो कहते हैं नरतुष्टः, कि सबके अंदर संतोष या संतुष्टि थी। धर्म आत्मनः, धर्म का आचरण करने वाले। सत्यवादिनः, हर समय वो सत्य बोलते। मान शून्य, हर समय उनके अंदर मान शून्यता का गुण रहता। और निंदा शून्य, किसी की भी वो निंदा नहीं करते। एक भी अयोध्या वासी किसी और की निंदा नहीं करता था। देखिए ऐसे राज्य में रहने का क्या सौभाग्य होगा कि सभी मान शून्य है और निंदा शून्य है। और हमें कहां पर रहना पड़ता है इस कलयुग में, जहां पर सभी लोग केवल मान ही मान चाहते हैं और उस मान को प्राप्त करने के लिए अपमान किए जा रहे हैं, निंदा किए जा रहे हैं। अयोध्या नगरी के विषय में कहा गया है कि अयोध्या नगरी में जितने भी कारागृह थे वो हर समय खाली रहते थे। कारागृह खाली रहते थे, केवल नाम मात्र के लिए थे कारागृह। कोई कारागृह में कोई व्यक्ति कभी कभी दिखता नहीं था। ताले की एक दुकान नहीं थी। पूरे अयोध्या नगरी में ताले की एक दुकान नहीं थी, क्योंकि कोई घर पर ताला लगाता ही नहीं था, क्योंकि कोई चोर थे ही नहीं। चोर कैसे दिखते हैं, चोरी कैसे होती है, किसी को पता नहीं था। यह है अयोध्या नगरी। यह सबसे बड़ा अजूबा है कि कोई ऐसी भी नगरी हुई थी जिसके अंदर कारागृह में कोई नहीं और ताले की एक दुकान नहीं, कोई चोरों को जानता नहीं, चोरी कैसे होती है ये सब कोई जानता नहीं। आजकल देखो, आजकल तो लोग गर्व करते हैं, जितना बड़ा ताला घर के सामने लगाया है देखो, इतना बड़ा लगाया है, उसके उसके सामने वॉचमैन भी खड़ा है और फिर गेट के बीच में कुत्ता भी है। तो जितना बड़ा ताला, जितने वॉचमैन, जितने कुत्ते, उतना गर्व लोग अपने आप को गर्वित करते हैं, मानते हैं। परंतु यहां पर देखिए बताया गया है कि असली गर्व किसका होना चाहिए। जितने ज्यादा ताले बढ़ रहे हैं, जितने कैदी बढ़ रहे हैं कारागृह में, उतना जो वो राज्य है असफल रहा, ये समझना चाहिए। तो फिर अयोध्या नगरी का वर्णन करने के पश्चात अब वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं महाराज दशरथ का, कि महाराज दशरथ हालांकि अयोध्या नगरी जो सर्वगुण संपन्न थी, परंतु महाराज दशरथ और महाराज दशरथ के जो निजी पार्षद थे वो भी बहुत प्रख्यात और विख्यात व्यक्ति थे। तो 8 विशेष मंत्री थे दशरथ महाराज के, और उनके विषय में वाल्मीकि मुनि कहते हैं, उनका नाम था दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंथरा। ये 8 विशेष मंत्री थे दशरथ महाराज के, और एक विशेष गुट था वरिष्ठ ऋषिगणों का, और उनके प्रमुख थे वशिष्ठ मुनि, वामदेव, जबाली ऋषि, काश्यप ऋषि, सुयज्ञ, ये सभी ऋषिगण थे वरिष्ठ ऋषि मुनि वो समुदाय के, उस अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के निजी पार्षद। इस सब ये सब कुछ होने के बावजूद, इसके पश्चात महाराज दशरथ जो थे वो दुखी दिख रहे थे। पूरी अयोध्या नगरी में केवल महाराज दशरथ दुखी दिख रहे थे, और वो क्यों दुखी दिख रहे थे? क्योंकि राम नहीं थे उस समय उनके साथ। सब कुछ था अयोध्या नगरी में, धर्म का आचरण हो रहा था, सब शीलवान थे, सभी सत्यवादी थे, परंतु क्योंकि राम नहीं थे इसलिए महाराज दशरथ दुखी थे। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत जो है वो अमल पुराण क्यों है? क्योंकि संसार में जितने भी धर्म हैं, जितने भी सारे धर्म हैं, जब तक वो धर्म सर्वोच्च परो धर्म को नहीं सिखाते हमें, वो सारे जो धर्म हैं कैतव धर्म हैं। इसीलिए हम जनानिवास प्रभु से ये प्रश्न पूछ रहे थे हाल ही में कि पाप की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने बहुत सुंदर परिभाषा दी पाप की। देखिए, उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति जब कोई व्यक्ति नहीं करता तो वो व्यक्ति एक प्रकार से पापी ही कहलाता है। जब तक पूर्ण शरणागति नहीं करता कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, तब तक उसका पाप बना रहता है। तो ये बहुत गहरा एक उन्होंने उत्तर दिया, और भारी उत्तर था ये। तो जब पूछा गया कि कैसे इसे समझा जाए, तो उन्होंने सिद्ध किया भगवद गीता के उस श्लोक से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान क्या कहते हैं श्लोक में कि सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ पूर्ण प्रकार से। तो भगवान सभी धर्मों को त्यागने का आदेश दे रहे हैं, और कौन से धर्म पालन करने का आदेश दे रहे हैं? पूर्ण शरणागति के धर्म का आदेश। उस आदेश को पालन करने के लिए कह रहे हैं भगवान। और फिर उन्होंने कहा कि भगवान कहते हैं कि जब इस धर्म का पालन करोगे, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तब मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब तक पूर्ण शरणागति नहीं आती हमारे जीवन में, तब तक भगवान पापों से मुक्त नहीं करेंगे। और क्यों पापों से मुक्त नहीं करेंगे? क्योंकि तब तक हम अन्य धर्मों को पकड़े हुए हैं, और जब तक अन्य धर्मों को पकड़े रहेंगे तब तक पाप बना रहेगा। तो इसीलिए महाराज दशरथ, हालांकि अयोध्या नगरी में जिसका इतना सुंदर वर्णन यहां पर किया गया है, वो दुखी थे क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी नहीं है वहां पर अभी तक। इसलिए भागवत में कहा गया है, धर्म स्वनुष्ठित पुमसाम विश्वक्षेन कथा सुयत न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। श्रम एव हि केवलम कहा गया है कि चाहे कोई व्यक्ति कितने भी धर्म का आचरण करे, कितने भी बड़े बड़े अनुष्ठान, यज्ञ, होम, तीर्थ स्थान, और उनमें स्नान कर आए अपने आप को शुद्ध करने के लिए, परंतु जब तक उसके अंदर न उत्पादेत यदि रतिम, जब तक भगवान श्री कृष्ण के प्रति या श्री राम के प्रति रति जागृत नहीं होती, श्रम एव ही केवलम, वो केवल श्रम मात्र है और कुछ नहीं है। और हम सोच रहे थे कि हम जो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं इस हरे कृष्ण आंदोलन में, तो ये भी एक प्रकार का धर्म है, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, जप यज्ञ कहा गया है भगवद गीता में इसे। तो जब हम जप करते हैं तो जप करने का उद्देश्य क्या है, निष्कर्ष क्या है, वो रति जागृत होनी चाहिए प्रभु श्री राम के प्रति। और यदि हम कितना भी सीधा बैठें या बहुत अच्छा उच्चारण करें इस हरे कृष्ण महामंत्र का, जब तक अंदर से भावना नहीं जागृत हो रही तब तक श्रम एव ही केवलम हो रहा है। एक सुंदर उदाहरण दिया गया है इसके विषय में, जैसे हम देखते हैं कॉलोनियों में, यहां पर भी इस कॉलोनी में मैंने देखा, रात को ये वॉचमैन घूमते हैं पहरेदारी करते हुए उस कॉलोनी की, सोसाइटी की। तो अक्सर ये सोसाइटियों में कॉलोनियों में देखा जाता है पहरेदार होते हैं, वॉचमैन होते हैं। तो यदि एक वॉचमैन जो डंडा हाथ में लिए हैं और टॉर्च भी है और वो सीटी बजाते हुए रात भर घूमता रहता है और रात भर वो सीटी बजाते डंडा मारते हुए जागते रहो कहता रहता है, पहले मुझे बचपन में लगता था कि जागते रहो सबको कह रहे जागते रहो तो सभी जागते रहेंगे तो चोर अंदर कैसे आएंगे फिर, तो मुझे पहले लगता था कि ये इसकी कोई युक्ति होगी कि सीटी मार कर डंडा पीट पीट कर किसी को सोने नहीं देता रात को और कोई सोएंगे नहीं तो कौन सा चोर अंदर जाएगा उनके घर पर। तो वृंदावन में हम एक आश्रम में रहते थे तो वहां पर वो आता था पहरेदार और वो साथ में बिस्तर लेकर आता था रात को। तो हम पूछते बिस्तर क्यों लेकर आ रहे हो भाई, तो जैसे ही सब 10:30 के बाद लाइट बंद हुई उसने अपना बिस्तर लगाया और वो छड़ी को बगल में रखा, टॉर्च बंद किया और फिर एक ही सिट्टी निकलती थी फिर मुंह से उसके ठोरने की। तो पहरेदार जो है वो चाहे कितना भी राउंड लगाए वो सोसाइटी का, चाहे कितनी भी वो सिटी मारे या टॉर्च मारते हुए लकड़ी पीटते हुए, जब सुबह जाकर वो बॉस को कहता है कि मैंने आज की पूरी ड्यूटी की, परंतु बॉस कहता है अरे भाई मेरी गाड़ी चोरी हो गई रात को, वो कहां गई, क्या ड्यूटी कर रहे हो तुम। तो हमारा जब भी कई बार ऐसा ही होता है कि हम बताते हैं भाई 16 माला पूरा किया है, 6:45 से लेकर 7:30 पूरा खत्म किया 16 माला एक बार एक जगह पर बैठकर और एक झपकी भी नहीं, और पूरा मंत्र एकदम सही उच्चारण जैसे वो पहरेदार ने सब कुछ रिपोर्ट दिया अपने बॉस को, परंतु अंततः भगवान पूछते हैं रति कहां है, वो प्रेम कहां है मेरे प्रति, वो माया ने चोरी कर लिया अपने लिए। तो जैसे बॉस उस पहरेदार को कहता है ये सब कुछ ठीक है, तुमको 10 राउंड लगाना होता है, रात को 10 राउंड लगाया तुमने, परंतु ये जो मेरी गाड़ी सुबह सुबह चोरी हो गई क्या फायदा तुम्हारा राउंड लगाने का, तो वैसे भी हम 16 राउंड लगाते हैं इसका तो रोज 16 राउंड घुमाते हैं उसका, परंतु यदि ये कृष्ण रति, ये प्रभु रामचंद्र जी के प्रति रति जागृत नहीं हो रही तो फिर श्रम एव ही केवलम हो रहा है। क्योंकि भगवान का नाम है तो थोड़ा बहुत कुछ अंश उसका मिलेगा हमें। तो कहा गया है कि देखिए जैसे श्रील प्रभुपाद जी उन्होंने अक्सर कहा कि हमारी साधना भक्ति में 99% प्रगति हमारी साधना भक्ति में ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से होगी, 99% प्रगति, और केवल 1% बाकी अन्य भक्ति के जो भी कार्य होंगे वो करने से होगी। तो कई बार हम देखते हैं कि वो जो 99% प्रगति हमारी भक्ति में होगी जप के कारण उसे ही हम भूल जाते हैं और फिर मन में इतना तनाव रखते हैं कि अरे मैंने ठीक से कंठी माला नहीं पहनी, मैंने ठीक से तिलक नहीं लगाया और मैं दंडवत कर से समय इस प्रकार से दंडवत नहीं कर पा रहा हूं। ये जो बाहरी और सारे जो अंग हैं भक्ति के, इनमें केवल हम लग जाते हैं कि कितना अच्छा मैं धोती पहनता हूं, तिलक लगाता हूं, ये मुझे भक्त बनाएगा। जैसे एक व्यक्ति मुझे आजकल का जो मानसिक तनाव है इसके विषय में एक स्टैटिस्टिक्स दे रहा था कि 60% जो टेंशन होता है लोगों का आजकल, वो उन घटनाओं के वजह से होता है जो कभी घटी नहीं और जो न कभी घटेगी। 60% टेंशन उन घटनाओं के वजह से जो कभी घटी नहीं न कभी घटेगी उसके जीवन में, केवल सोचते हुए या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, अभी मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। 60% तनाव टेंशन उसके वजह से। फिर कहा है 38% तनाव होता है उन व्यक्तियों को लेकर जिसके ऊपर उस व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। तो कभी उन व्यक्तियों के ऊपर वो अपना कंट्रोल नहीं कर सकता और उन व्यक्तियों को लेके 38% तनाव रहता है उसके जीवन में। तो 60 और 38 कितना हो गया? 98, 98 बचा केवल 2%। तो जो असली वजह है किसी व्यक्ति के टेंशन में आने का, वो केवल 2% होता है और उसके लिए उसके पास समय नहीं रहता। कभी उसका पूरा समय चला जाता है वो 98% उस टेंशन को दूर करने में, जो न केवल घटे कभी घटेगा न केवल कभी उसका घटा है, और ऐसे व्यक्तियों को लेकर जिसके ऊपर कभी उसके नियंत्रण कभी हो नहीं पाएगा। तो कई बार भक्ति में भी हम बेकार फालतू किसी चीज को लेके भयभीत रहते हैं। जैसे हमारे एक भक्त बता रहे थे कि एक बार वो प्रसाद के लिए नीचे आए प्रसादम हॉल में, तो एक नए नए भक्त वो सर्विंग कर रहे थे, तो पहले से ही लोग बैठे थे पंगत में, प्रसाद चालू हो गया था। तो ये भक्त नीचे आए तो इन्होंने देखा कि मैं स्वयं ही ले लेता हूं, तो स्वयं ले रहे थे कुछ दाल या सब्जी ले रहे थे, तो ये भक्त ये भाग कर आए कि अरे अरे मेरी सेवा है ये प्रसाद वितरित करने की। और उस व्यक्ति के, उस सेवक के आने से पहले इस भक्त ने अपने प्लेट में डाल लिया था दाल। यार प्रभु जी आपने डाल दिया, मेरी सेवा थी प्रभु जी आप। तो नहीं यार ठीक है और बाकी कुछ डाल दो अगर आपको इच्छा है कुछ डालने की। तो ये भक्त 3 दिन बाद आता है इनके पास, कहता है कि मैं 3 दिन से सो नहीं पा रहा। क्यों भाई सो नहीं पा रहे? क्योंकि उस दिन मैं आपको डाल नहीं डाल सका। तो ये भक्त सोच रहा, अरे बाप रे, वो 3 दिन पहले कुछ घटना घटी उसको लेकर 3 दिन से सो नहीं पा रहा ये व्यक्ति। तो कई बार हम देखिए भक्ति में कोई ऐसी चीजों को पकड़ लेते हैं जिसका कोई संबंध नहीं भगवान की भक्ति को प्राप्त करने में। तो कई बार लोग ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं। एक व्यक्ति मुझे पूछ रहा था कि प्रभु जी यदि सभी भक्त बन जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि सभी ग्राम में सभी नगर में हरि नाम फैलेगा, तो यदि इस पूरी पृथ्वी में सभी लोग हरि नाम लेंगे, सभी भगवत धाम चले जाएंगे, वहां भीड़ हो जाएगी ना? यदि सभी भगवत धाम चले जाएंगे तो उधर बहुत गर्दी हो जाएगी। देखिए तो कई लोग पूछते हैं कि यदि सभी आपके जैसे बन जाएंगे तो ये संसार चलेगा कैसे, जो कभी होने नहीं वाला, परंतु ऐसे प्रश्न अवश्य पूछते हैं जो कभी होने नहीं वाला। तो व्यक्ति मेरे को पूछता है कि सभी आपके जैसे हो जाएंगे तो कैसे चलेगा संसार। मैंने कहा सभी तो दूर की बात है, आप भी नहीं होंगे कभी, तो ये ऐसा प्रश्न हो गया कि मानो यदि सभी कैदी जेल से बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा। अरे भाई अच्छा हो गया, जेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही लोग पूछते हैं कि ये संसार से यदि सभी भगवत धाम चले जाएंगे तो क्या होगा संसार का। जैसे कि यदि सभी कैदी सज्जन बन जाएंगे तो क्या होगा। अरे भाई कोई पहाड़ टूट जाएगा क्या, आकाश गिर जाएगा। अच्छा होगा यदि सभी भगवत धाम चले जाएंगे तो। तो इस प्रकार के जो काल्पनिक प्रश्न होते हैं जिसमें वो काल्पनिक समस्याओं को लाते हैं, जैसे अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि यदि हम मांस नहीं खाएंगे, यदि बकरियों को नहीं खाएंगे, एक व्यक्ति मुझे बोल रहा था यदि इन बकरियों को हम नहीं खाएंगे तो ये पूरे शहर में बकरियां भर जाएगी, सब जगह बकरियां ही बकरियां दिखेंगी। तो मैंने कहा वो तुमसे तो अच्छी हैं बकरियां। तो मांस, हम मांस क्यों खा रहे हैं, ताकि शहर में सभी अच्छी से रह सकें, वो हमारे मांस खाने का कारण। ये समाज सेवा हम कर रहे हैं लोगों के लिए, ये हमारी समाज सेवा है कि सभी बकरियों से बचे रहें इसलिए हम खा रहे हैं। वाह रे वाह, वो बकरी भली इन मनुष्यों से। जैसे एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी आप कहते हैं कि ये जो भौतिक संसार है ये भगवान का एक चौथाई इनकी सृष्टि है भगवान की, और तीन चौथाई आध्यात्मिक संसार है। ये भौतिक संसार इतना बड़ा है तो आध्यात्मिक संसार जो तीन चौथाई है वो कितना बड़ा होगा। तो जब हम किस दिन यदि हम उधर जाएं वो तीन चौथाई इतने बड़े आध्यात्मिक संसार में, तो आपको पहचानेंगे ढूंढेंगे कैसे हम, इतना बड़ा होगा वो तो आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन, तो आपको ढूंढेंगे कैसे। तो प्रभुपाद जी ने कहा डरो मत, मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें। तो एक भक्त बता रहे थे कि यदि हम उधर गोलोक वृंदावन में जाएं तो हम पहचान लेंगे कि ये इस्कॉन से कौन आया है उधर। और कैसे पहचानेंगे, जब सभी गोलोक वृंदावन में जप के लिए बैठेंगे जो सबसे ज्यादा नाड़ हिलाता है जप करते समय, ये जरूर इस्कॉन से आया होगा नीचे। और जब प्रसादम की लाइन लगेगी जो सबसे पहले खड़ा रहेगा प्रसादम की लाइन में, ये अवश्य ही इस्कॉन से आया होगा। और फिर कहा गया ये जब कीर्तन शुरू होगा जो सबसे ऊंचा कूदेगा कीर्तन में, ये इस्कॉन से ही आया है। तो प्रभुपाद जी ने कहा डरो मत, मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें जब कभी भी तुम भगवत धाम आओगे। तो ये सारे लोगों के अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। परंतु यहां पर देखिए दशरथ महाराज, क्योंकि श्री रामचंद्र जी नहीं है अयोध्या में, अब तक वो प्रकट नहीं हुए थे, तो महाराज दशरथ वो दुखी थे। और दशरथ महाराज दर्शा रहे हैं अपने उदाहरण से कि हालांकि ये संसार व्यक्तियों को अच्छा लगता होगा, और किसी व्यक्ति ने जैसे अयोध्या नगरी में कोई कमी नहीं थी, परंतु क्योंकि रामचंद्र जी नहीं थे तो दशरथ महाराज दुखी थे। तो दशरथ महाराज बता रहे हैं इस उदाहरण से अपने कि इस भौतिक संसार में चाहे हम कितनी भी सुविधा इकट्ठा कर लें अपने सुख के लिए, हर समय कोई एक कांटा रहेगा, कोई एक कंटक रहेगा जिसके वजह से हम दुखी रहेंगे। जैसे महाराज चित्रकेतु की कथा है भागवत में कि महाराज चित्रकेतु भी दुखी थे क्योंकि उन्हें पुत्र नहीं था। और महाराज चित्रकेतु, यहां पर तो महाराज दशरथ की केवल चार रानियां थी, हा? तीन रानियां थी, केवल तीन रानियां थी महाराज दशरथ की। महाराज चित्रकेतु की कितनी रानियां थी? 1 करोड़। करोड़पति थे, वास्तविक रूप में करोड़पति थे वो। तो महाराज चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी और एक भी संतान नहीं। तो हम सोच रहे थे यदि महाराज चित्रकेतु यदि वो अपना फैमिली फोटोग्राफ निकालने जाए तो लगता है विमान से ऊपर से निकालना होगा उनका फैमिली फोटोग्राफ, वो एक और उनके 1 करोड़ पत्नियां। और यदि कोई उनको नाम भी याद रखना है इस पूरे 1 करोड़ का, तो कोई ऐसा कंप्यूटर होगा उनके पास कि जिसके अंदर पूरा ऐसा डेटाबेस बनाया होगा 1 करोड़ रानियों का। तो महाराज चित्रकेतु वो शोक में थे क्योंकि उनको पुत्र नहीं, परंतु जब पुत्र मिला उसका भी नाम अंगिरा मुनि ने दे दिया हर्ष शोक, कि हर्ष भी देगा और उसके साथ साथ शोक भी देगा, तो तैयार रहना दोनों के लिए। परंतु उस समय तो वो सोच रहे थे ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्या शोक देता है, थोड़ा नटखट होगा, यहां वहां भागेगा, ठीक पर समय पर खाएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या शोक दे सकते हैं। परंतु पता नहीं था कि ऐसा शोक देगा कि वो शॉक की तरह होगा, हिला देगा महाराज चित्रकेतु को। तो यहां पर महाराज चित्रकेतु और दशरथ वो शोक में है क्योंकि पुत्र नहीं। और एक और व्यक्ति है भागवत में जिनका वर्णन है, महाराज अंग। महाराज अंग के पुत्र थे, कौन थे? वेण। और महाराज अंग वो शोक में थे क्योंकि ये बहुत बड़ा दुराचारी पुत्र था, एक प्रकार का राक्षस वेण। खेलते खेलते अपने मित्रों को मार डाला करता था वो। तो यहां पर चित्रकेतु और दशरथ पुत्र नहीं इसलिए शोक अवस्था में है, अंग महाराज के पुत्र हैं फिर भी शोक अवस्था में है क्योंकि वो अभक्त है। और एक व्यक्ति जिसके पुत्र थे और वो भी दुखी था, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु के जो पुत्र थे वो अनन्य भक्त, और हिरण्यकशिपु इसलिए दुखी। हिरण्यकशिपु का शोक क्या था कि ये भक्त क्यों है। और महाराज अंग का शोक क्या था कि ये वेण भक्त क्यों नहीं है। और दशरथ और चित्रकेतु महाराज का शोक पुत्र ही नहीं है। जैसे हमारे मंदिर के एक ब्रह्मचारी, वो जब अपने घर पर गए तो बहुत विरोध था उनके घर पर, वो जब आश्रम ज्वाइन किए थे तो उनके पिताजी आकर कहते हैं 1 साल बाद, कहते हैं देखो मेरा कितना सूख गया है मेरा लड़का, कुछ खिलाते नहीं यहां पर तुम हरे कृष्णा वाले, बिल्कुल सूख गया है। तो फिर उन्होंने सोचा भाई इनको अच्छी से खिलाया जाए, तो अच्छी से खिलाया पिलाया और 1 साल तो अब थोड़े वो अच्छे तंदुरुस्त हो गए। तो फिर जब वो 1 साल बाद गए तो पिताजी कहते हैं तुम हरे कृष्णा वाले केवल खाते हो सोते हो, देखो कितना मोटा हो गया तुम। वो कहता 1 साल पहले कहते कुछ खिलाते नहीं, अब बोलते हो कि खाली खाते हो सोते हो तुम हरे कृष्णा वाले, कितना मोटा हो गए देखो। तो फिर उन्होंने फिर थोड़ा कोई व्यायाम वगैरह किया और ठीक से अब अपना स्वास्थ्य बनाया और फिर गए। इसमें क्या बड़ी बात है, तो मैं भी दे रहा था तुम्हें घर पर। तो जब बेचारा वो जब पतला था तब उसके ऊपर आरोप, जब थोड़ा ज्यादा हो गया, महाप्रसाद की कृपा ज्यादा हो गई तो भी आरोप, और जब ठीक से स्वास्थ्य हो गया तो कहने लगे तो ये तो मैं भी दे रहा था तुम्हें घर पर, इधर आने की क्या जरूरत थी। परंतु यहां पर महाराज दशरथ वो इच्छुक थे कोई साधारण पुत्र के विषय में नहीं। महाराज चित्रकेतु और महाराज दशरथ में बहुत अंतर है। दोनों के शोक में बहुत अंतर है। महाराज चित्रकेतु केवल कोई भी पुत्र चलेगा, कोई भी कैटेगरी चलेगा, हर्ष शोक हर्ष शोक, केवल शोक केवल शोक, केवल हर्ष केवल हर्ष, जो भी है दे दो। परंतु दशरथ महाराज कौन से पुत्र चाहते थे? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनको पुत्र रूप में चाहते थे। तो महाराज दशरथ उन्होंने फिर सुमंथरा अपने निजी मंत्री को बुलाया और कहा कि जाकर सारे ऋषिगणों को बुलाओ और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरी एक योजना है, उनसे मैं आज्ञा लेना चाहता हूं। तो यहां पर अंतर है कि महाराज दशरथ जब शोक अवस्था में आते हैं तो वो शरण ग्रहण करते हैं भगवान के भक्तों का, और महाराज दशरथ अब ऋषि मुनियों को बता रहे हैं, वशिष्ठ और अन्य ऋषि मुनियों को बुलाकर वो कहते हैं कि मैं एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहता हूं जिसे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो वो यज्ञ किस प्रकार का होता है और सारे ऋषि मुनि ये जब सुनते हैं महाराज दशरथ का ये प्रयोजन तो कितने खुश होते हैं, कितने आनंद में होते हैं। और सुमंत्र एक बहुत ही विशेष सुझाव देते हैं महाराज दशरथ को कि ये अश्वमेध यज्ञ कौन करना चाहिए आपका, वो है महाराज ऋषयशृंग। तो ये सब की चर्चा हम करेंगे कल रामनवमी के अवसर पर, क्योंकि इस यज्ञ से उत्पन्न हुए प्रभु श्री रामचंद्र और उनके तीनों भाई, तो इसकी चर्चा हम करेंगे कल रामनवमी के उपलक्ष्य में। और हम सोचे थे आज थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे परंतु फिर भी 9:30 बज गया है, तो कल का कार्यक्रम शाम को होगा, क्योंकि हमें बताया गया है कि आप लोग सब शाम को ज्यादा उपलब्ध हैं। तो शाम का कार्यक्रम 6 बजे कीर्तन से प्रारंभ होगा और 7 बजे अभिषेक होगा प्रभु श्री रामचंद्र सीता लक्ष्मण का, और 7:45 बजे से प्रवचन प्रारंभ होगा और उसके पश्चात नाटिका और सबके लिए प्रसादम। तो मेरे ख्याल से आज भी हम सबके प्रसन्नता के लिए हमारे यहाँ के भक्तगण नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी।